ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 101। मनु बोले, हे राजन, बड़ा आश्चर्य है कि शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में माया से नाना प्रकार के देह, इंद्रिया और दृश्य भासित हुए हैं। हे राजन, दृश्य का कारण अज्ञान है। जिस आत्मा के मोह आवरण अज्ञान से दृश्य रूप भासित होता है, उसी के ज्ञान से वह अज्ञान लीन हो जाता है। इस कारण इस संवेदन को त्याग कर आत्मा की भावना कर। यह मैं हूँ, यह मेरे हैं, ये संकल्प मिथ्या ही उठते हैं। हे राजन, प्रथम कारण रूप से एक जीव उपजा, फिर उस आदि जीव ने अनेक जीवगण हुए। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, वैसे ही उसने अनेक रूप धरे हैं। कोई गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई राक्षस इत्यादि हुए हैं। फिर जैसे संकल्प होते गए हैं, वैसे ही रूप होते गए। वास्तव में जैसे जल में तरंग स्वरूप के प्रमाद से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने संकल्प अपने ही को बंधन होते गए हैं। इससे संकल्प नानात्व की कल्पना मिथ्या है। हे राजन, इस भावना को त्याग कर आत्मपद को प्राप्त हो। आत्मा अनंत है, यह विश्व भान और प्रकार का होता है। जैसे समुद्र सम है, पर उसमें जो कई आवर्त तरंग और बुलबुले उठते हैं, सो जल से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में अनेक प्रकार का विश्व जो दिखता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मस्वरूप ही है। ऐसे आत्मा की भावना कर। कहीं ब्रह्म सत्संकल्प होकर स्फुरित होता है, तो जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध रूप और सदा मुक्त रूप हूँ, और इस संसार समुद्र से पार हो गया हूँ। जहाँ चेतना शक्ति है, वहाँ अपने को जीता मानता है और दुखी भी जानता है। अंतःकरण से मिलकर भोग की भावना करना और सदा विषय की तृष्णा करना जीवात्मा का लक्षण है। जहाँ वासना क्षय हुई और शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष हुआ, वह जीव संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल शुद्ध आत्मा प्रकाश पाता है। हे राजन, चेतन जब अंतःकरण से मिलकर बहिर्मुख होता है, तब संसारी होकर जरा मरण से दुखी होता है, और जब चेतन शक्ति अंतर्मुख होती है, तब जन्म मरण की भावना को त्याग कर स्वरूप की भावना करता है, जिससे सब दुखों की निवृत्ति होती है। जब इसकी भावना स्वरूप की ओर लगती है, तब कोई दुख नहीं रहता, और जब इसे स्वरूप का प्रमाद होता है, तब यह दुख पाता है। स्वरूप के ज्ञान से आनंद रूप मुक्त होता है। हे राजन, तो संसार रूपी कूप की गगरी न हो। जब गगरी रस्सी से बंधती है, तो कभी ऊपर को जाती है और कभी नीचे, पर जब रस्सी टूट जाती है, तब न ऊपर को जाती है और न नीचे को। कूप क्या है, नीचे क्या है और ऊपर क्या है, यह भी सुन। हे राजन, यह संसार ही कूप है। स्वर्गलोक ऊपर है और नरक नीचे है। जीव पुण्य कर्म से स्वर्ग को और पाप कर्म से नरक को जाता है। इसी प्रकार आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव जन्म मरण रूपी चक्र में फिरता है। स्वर्ग और नरक में फिरने का कारण आशा है। जब आशा निवृत्त होती है, तब न कोई नरक है न स्वर्ग है। जब तक देह में अभिमान है, तब तक नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। जैसे पत्थर की शिला समुद्र में डालो तो नीचे से नीचे चली जाती है, वैसे ही नीच स्थानों को देखकर देह अभिमानी नीचे को चला जाता है। जब इंद्रियादिक का अभिमान त्याग करता है, तब जैसे क्षीर समुद्र से निकलकर चंद्रमा नीचे से ऊपर को चला जाता है, वैसे ही ऊपर को जाता है। हे राजन, यदि आत्मा की भावना करेगा तो आत्मा ही होगा। इससे आशा रूपी फांसी को तोड़कर शांत पद को प्राप्त हो। आत्मा चिंतामणि की तरह है, जैसी भावना कीजिए वैसे ही सिद्धि होती है। यदि तू आत्म भावना करेगा तो संपूर्ण विश्व अपने में देखेगा। जैसे पर्वत शिला और पत्थर को अपने में देखता है, वैसे ही तू भी सबको आत्मा जानेगा। हे राजन, जो कुछ दृश्य है सो सर्वात्मा के आश्रय है। शास्त्र और शास्त्र दृष्टि सब आत्मा के आश्रय हैं। राजा भी आत्मा के आश्रय हैं। वह सर्व सत्य आत्मा चिंतामणि कल्प वृक्ष है। जैसे कोई भावना करता है वैसे ही सिद्धि होती है। हे राजन, स्फुरण में यह सब दृश्य सत्य है। जब स्फुरण नष्ट होता है तब न कोई शास्त्र है और न कोई दृष्टि। जब केवल अद्वैत आत्मा है तब निषेध किसका कीजिए और अंगीकार किसको करिए। जो पुरुष अहंकार से रहित हुआ है वह सर्व शास्त्र दृष्टि पर विराजता है और सर्व आत्मा होता है। जैन उसी को जिन कहते हैं और कालवादी उसी को काल कहते हैं। सबका आश्रय आत्मा है। जो पुरुष देह अभिमानी है वही मूर्ख है और स्वरूप के अज्ञान से नीचे और ऊपर के लोकों में आता जाता रहता है। पशु पक्षी आदि की स्थावर जंगम योनिया पाता है और आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ दुख को प्राप्त होता है। जो पुरुष सम्यग्दर्शी है और जिसकी शुद्ध चेष्टा है उसको कोई विकार नहीं देख पड़ता। वह आकाश की तरह सदा निर्मल निर्लिप्त भासित होता है। उसको संपूर्ण विश्व आत्मस्वरूप दिखता है। जो चेष्टा ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि करते हैं उसका कर्ता भी वह अपने को जानता है। उसके सब दुखों का अंत होता है। वह आत्मपद को प्राप्त होता है। उसको सब सुखों की सीमा प्राप्त होती है। हे राजन, जैसे नदी तब तक चलती है जब तक समुद्र को नहीं पाती, पर जब समुद्र को पहुंच जाती है तब नहीं चलती, वैसे ही जब तू आत्मपद को प्राप्त होगा कोई इच्छा तुझे न रहेगी। हे राजन, तू अहंकार का त्याग कर अथवा ऐसा जान कि सब मैं ही हूं। जरा मरण आदि दुख तब तक है जब तक आत्मबोध नहीं होता। जब आत्मबोध होता है तब कोई दुख नहीं रहता। दोनों ही दुख भारी हैं, पर ज्ञानी को इंद्र के वज्र समान दुख भी स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जैसे पेड़ से सूखकर फल गिरता है, उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है तब मन बुद्धि अहंकार पेड़ की तरह गिर पड़ते हैं। जब तक मन की चपलता है तब तक दुख पाता है। जब मन की चपलता निवृत्त होती है तब कोई क्षोभ नहीं रहता और शांत पद को प्राप्त होता है। शांति तब होती है जब प्रकृति का वियोग होता है। प्रकृति के संयोग से संसारी होता है और दुख पाता है। इसे प्रकृति को त्याग दे अर्थात अहंकार से रहित होकर चेष्टा कर। जब तू अहंकार से रहित होगा तब उस पद को प्राप्त होगा जो न जड़ है न चेतन है, न शून्य है न अशून्य है, न केवल है न अकेवल है। उसे न आत्मा कह सकते हैं न अनात्मा, वह न एक है न दो। जो कुछ नाम है सो प्रतियोगी से मिले हुए है। प्रतियोगी होकर द्वैत होता है पर आत्मा अद्वैत है, जिसमें वाणी की गति नहीं। जो अनिर्वचनीय पद है उसको वाणी से कैसे कहिए। जितनी नाम संज्ञा है सो उपदेश मात्र है। आत्मा अनिर्वाच्य पद है, इससे संकल्प का त्याग करके आत्मा की भावना कर। जब तू आत्म भावना करेगा तब केवल आत्मा ही प्रकाशित होगा। जैसे फूल का कोई अंग सुगंध से रहित नहीं होता, वैसे ही आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। हे राजन, जब अहंकार का त्याग करेगा तब अपने आप शोभायमान होगा और आकाश की तरह निर्मल आत्मा में स्थित होगा। अहंकार को त्याग कर उस पद को प्राप्त होगा जहां शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ नहीं पहुंचते, जहां संपूर्ण इंद्रियों के रस लीन हो जाते हैं और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। तब केवल मोक्ष पद को प्राप्त होगा। हे राजन, मोक्ष किसी देश में नहीं कि वहां जाकर पावे, न किसी काल में ही है कि अमुक काल आवेगा तब मुक्त होगा, और मोक्ष न कोई पदार्थ है कि उसको ग्रहण करेगा। केवल अहंकार के त्याग से मोक्ष होता है। जब तू अहंकार का त्याग करेगा तभी मोक्ष है। जब तू इस अनात्म अभिमान को त्यागेगा तब अपने आप शोभायमान होगा। जैसे धुएं बिना अग्नि प्रकाशमान होती है, वैसे ही अहंकार बिना तू प्रकाशित होगा। जैसे बड़े पर्वत पर निर्मल और गंभीर तालाब सोहता है, वैसे ही तू सोहेगा। हे राजन, तू अपने स्वरूप में स्थित हो। मनु बोले, हे राजन, तू शुद्ध और राग द्वेष से रहित आत्माराम नित्य अंतर्मुख रहे। जब तू आत्माराम होगा तब तेरी व्याकुलता नष्ट हो जाएगी और तू शीतल चंद्रमा सा पूर्ण हो जाएगा। ऐसा होकर अपने प्रकृत आचार में विचर और किसी फल की वांछा न कर। जो पुरुष वांछा से रहित होकर कर्म करता है वह सदा अकर्ता है और महाशोभा पाता है। ऐसी अवस्था में स्थित होकर जो भोजन आवे उसको खा ले और जो अनिच्छित वस्त्र आवे उसको पहन ले। जहां नींद आवे वह सो रहे, राग द्वेष से रहित हो। जब तो ऐसा होगा तब शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ का उल्लंघन कर लौकिक व्यवहार करेगा। जो ऐसा पुरुष है वह परम रस को पाकर मतवाला होता है। उसको संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती। हे राजन, ज्ञानवान चाहे काशी में देह त्याग अथवा चांडाल के ग्रह में, वह सदा मुक्त ही है। वह सदा आत्म रूप में स्थित है। वर्तमान काल में वह देह को नहीं त्यागता, क्योंकि जिस काल में उसको ज्ञान हुआ है उसी काल में देह का अभाव हुआ। ज्ञान से देह की बाधा हट जाती है। हे राजन, ज्ञानवान सदा मुक्त रूप है। वह न किसी की स्तुति करता है और न निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ते हैं और वह हंसता रोता भी देख पड़ता है, पर उसके अंतर में न राग है न द्वेष। वास्तव में वह न हंसता है न रोता है, ज्यों का त्यों है। जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं परंतु आकाश को वे लिप्त नहीं करते, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करता। पर अज्ञानी जानता है कि ज्ञानवान को क्रिया बंधन करते हैं। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है, जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है, जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से भी नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसे संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं, इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा मृत्यु आदि दुख से विमुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छोटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। हे राजन, इससे तो आत्मा की भावना कर जिससे तेरे दुख नष्ट हो जावे। अज्ञान से तुझे दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप है। इसे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो जाओ। जब तुम आत्मा में स्थित होंगे तब जैसे शुद्ध मणि के निकट श्वेत, रक्त, पीत, श्याम आदि रंग रखिए तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता, वे कल्पित से भासित होते हैं, वैसे ही तू प्रकृत आचार को अंगीकार करता रहेगा पर तुझे पाप पुण्य का स्पर्श कोई न होगा। हरि ओम, हरि सहनावतु सहनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।